अगली सूरत सूरत जुमा है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दौर था, जुमे की दिन आप खुतबा फरमा रहे थे। दौराने खुतबा आवाज लगी कि वो काफला आ गया, कई दिन से जिसका राह देखा जा रहा था। सामान्य तिजारत उस पर होता था, जाहिर सामान आएगा, बेचेंगे, फिर रोटी लेके जाएंगे। अल्लाह ने आजमा लिया। कई दिन के इंतजार के बाद वो ऐन उस वक्त आया जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुतबा दे रहे थे और आवाज लग गई, लोगों का काफला आ गया। बस वो जो मस्जिद में बैठे थे ना, माल और औलाद की मोहब्बत ने भुला दिया के बैठे कहाँ हैं, उठ के चल पड़े। खुतबा तो हर हफ्ते होता है, जुम्मा तो हर हफ्ते पढ़ते हैं, ये काफला तो अगले हफ्ते कोई नहीं आना। ये फिर माल और औलाद का तकाजा जो आपको मुझे अल्लाह के रास्तों से उठा देता है। सच्ची बताइए कि इस आयतों को पढ़कर डर नहीं लगता? आइए अब जरा इस शऊर से पढ़ते हैं। शुरू में अल्लाह ने बनी इसराइल की कुछ मिसालें दी, आखिर में वाक्य। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, युसब्बिहुलिल्लाहि मा फिस्समावाति व मा फिल अर्द। अल्लाह के नाम से जो बेइंतहा मेहरबान और रहम फरमाने वाला है। अल्लाह की तस्बीह कर रही है हर वो चीज जो आसमानों में है और जो चीज जमीन में है। बादशाह है निहायत मुकद्दस, जबरदस्त और हकीम। 28वें पारे की क्या खूबी सामने आ रही है, अल्लाह अल्लाह और अल्लाह के नाम। पहली सूरत मुजादिला, हर आयत में लफ्ज अल्लाह, उसके बाद से अब तक आप देख रहे हैं कसरत से अल्लाह के नाम। तो बस अल्लाह की जात को सामने रख ले, सारे काम आसान होंगे। वही है जिसने उम्मीदों के अंदर एक रसूल खुद इन्हीं में से उठा दिया, जो इन्हें इसकी आयात सुनाता है और उनकी जिंदगी संवारता है और इनको किताब और हिकमत की तालीम देता है। वह इन कानू मिन कब्ल लफी दलाल मुबीन, हालांकि इससे पहले वो खुली गुमराही में पड़े हुए थे। ये है आपका सिलेबस। कुछ लोगों के जिन में सवाल है कि आप जो कोर्सेज ऑफर करेंगे या करते हैं उसका क्या सिलेबस है। अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत खुशी होती है आपके ऐसे सवाल, ऐसी इंक्वायरीज को लेकर। तो ये आयत का नंबर नोट कर लें आप, आयत 2 है सूरह जुमा की। यही सिलेबस है नूरुल कुरान के हर फुल कोर्स का और पार्ट टाइम कोर्सेज का। तालीम, तज़किया, तरबियत और उसके बाद हिकमत। कुरान पढ़ना आ जाए, कुरान पर ईमान बढ़े, उस पर गौर व फिक्र करना आ जाए, तजवीद ठीक हो जाए, उसको समझने के लिए अरबी ग्रामर की कुछ गुथियाँ सुलझ जाएं, फिर आयतों को पढ़ने के दौरान युज़क्कीहिम तज़किया, यानी तज़किया क्या होता है कि आप जिंदगी में उसको कैसे इम्प्लीमेंट करें, और उसके बाद युअल्लिमुहुल किताब वल हिकमा, कुरान की डीप डाउन स्टडी और हिकमत यानी हदीस और सीरत। आप देखिए ये कितना खूबसूरत पैकेज है जो तीसरे मौके पे यहाँ आज कुरान में हमारे सामने आया। यही थी नबी सल्लम की कामयाबी की वजह। आप बेहतरीन मुअल्लिम थे। जो लोग एडवांस कोर्स करते हैं उनको हम एक किताब पढ़ाया करते हैं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहसियत मुअल्लिम, या गालिबन 140 या कितने डिफरेंट एंगल हैं हदीस के वाक्यात कि नबी सल्लम किस तरीके से तालीम देते थे। आप देखेंगे हर तरीके में यही तरीका है, सोच है। दुआ कीजिए अल्लाह ताला हमें इस तरीके पे सीखने वाला बना दे। कई साथी हैं वो कहते हैं हम कई साल कुरान पढ़ते आए, सब सही होता है माशाल्लाह, तजवीद बहुत अच्छी हो जाती है, अल्लाह ताला और भी बरकत दे, ग्रामर बहुत अच्छी, सर्फ नहव, फिर फिक्र बहुत अच्छी हो जाती है, शान नजूल भी याद होते हैं, लेकिन वो कहते हैं कि तज़किया नहीं होता। खुद मेरे पास नाम मेरी आंखों के आगे वो सिस्टर्स हैं माशाल्लाह कि जो हमारी कोर्सेज में कब आई, जब पहले से पढ़ी हुई थी, और मुझे बेस्ट वो लोग लगते हैं दो तरह के, एक जिन्होंने कुछ नहीं पढ़ा, कोरे चिट्टे सफेद कागज की तरह आ जाए कि लिख दो हमारे दिलो दिमाग पे, और एक वो जो पहले कहीं पढ़ के आए हैं लेकिन अब उनका दिल है कि हम अपने आप को रिफ्रेश करें। और पढ़ा हुआ बंदा जब आपके पास आता है ना, तो इस बात की दलील होता है कि उसके दिल में किब्र नहीं है कि मैं तो बड़ा पढ़ा लिखा हूं, बल्कि ऐसे लोगों को हम साथ काम भी देते हैं हर जगह। जब पहला कोर्स नया शुरू हुआ किसी मुल्क में भी, तो पहले कोर्स में वही लोग स्टूडेंट होते हैं और उसमें से 10-20% लोग एज अ हेल्पर भी काम करते हैं, क्योंकि कोई पीछे से तो नहीं लाने होते, पौधा तो अपनी जगह पे लगता है। तो लिहाजा जिस बंदे के पास कोई स्किल होती है, अगर उसको दोबारा कुरान पढ़ने का मौका मिले, और हमारी एक बड़ी अच्छी सिस्टर है इस वक्त, हमारी बड़ी क्लोज सिस्टर है, वो खुद इस बात की गवाही देती हैं, कहती हैं सब कुछ हो गया था लेकिन तो उस तरह अल्लाह से डर नहीं लगता था जैसे आप ये दोस्त बारे पढ़ के लगता है। तस्किया की कमी है, और तरबियत में तो काफी ही कमी है। अल्लाह से दुआ कीजिए कि दोनों चीजें हमें करने वाला और होने वाला बना दे। सबसे पहले अल्लाह ताला हमारी तरबियत करे, हमारा तज़किया करे, क्यों? अगर एक का हो गया तो इंशाल्लाह आगे 100 का भी हो जाएगा, और अगर एक का ना हुआ तो वो फिर 100 पे जरब लग के ऐसा ही होगा जो कि अमूमन होता है। अल्लाह ताला हमारी इसलाह फरमाए। फिर इसके बाद फरमाया, व इन कानू मिन कब्ल लफी दलाल मुबीन, हालांकि इससे पहले वो लोग खुली गुमराही में थे। इस रसूल की बेइज्जती इन दूसरे लोगों के लिए भी जो अभी इनसे नहीं मिले। अल्लाह जबरदस्त और हकीम है, ये इसका फजल है, जिसे चाहता है देता है और वो बड़ा फजल फरमाने वाला है। आगे मजहबी तबके पे तनकीद है, जिन लोगों को तौरात का हामिल बनाया गया था मगर उन्होंने इसका बोझ ना उठाया, इनकी मिसाल इस गधे की सी है जिस पर किताबें लदी हुई हों। यानी आलिम बेअमल गधे की तरह, किताबें तो उठाए उठाए फिरता है पर अमल नहीं होता। इससे भी ज्यादा बुरी मिसाल है इन लोगों की जिन्होंने अल्लाह की आयतों को झुठला दिया। ऐसे जालिमों को अल्लाह हिदायत नहीं देता। इनसे कहो ऐ लोगों जो यहूदी बन गए हो, अगर तुम्हें ये घमंड है कि बाकी सब लोगों को छोड़कर बस तुम ही अल्लाह के चहीते हो तो मौत की तमन्ना करो। खुशफहमियां थी कि हमारे बगैर कोई जन्नत में जाएगा नहीं, तो कहा फिर मरने की तमन्ना करो, लेकिन ये हरगिज इसकी तमन्ना न करेंगे अपने इन करतूतों की वजह से जो ये कर चुके। और अल्लाह इन जालिमों को खूब जानता है, इनसे कहो जिस मौत से तुम भागते हो वो तो तुम्हें आकर रहेगी, फिर तुम इसके सामने पेश किए जाओगे जो पोशीदा और जाहिर का जानने वाला है। फिर इसके बाद वो तुम्हें बता देगा बिमा कुन तुम तामलून, जो कुछ तुम करते थे। मौत से कोई मफर नहीं, कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत। आज मैं और आप जिस दुनिया में जी रहे हैं उसकी सबसे बड़ी हकीकत मौत है। खुद से कहें मेरी मौत की डेट फिक्स है, तारीख पक्की हो गई मौत की। मौत के लिए जीना और बात है और जिंदगी के लिए जीना बिल्कुल दूसरी बात है। जिसको ये यकीन हो जाता है ना कि मैं अपनी मौत की तरफ बढ़ रहा हूं, वो जिंदगी से फायदा उठाता है। फिर वो रिश्तों के इस जोड़ तोड़ में, दीन और दुनिया के तकाजों में हमेशा दीन को चूज करता है कि छोड़ो ये मेरे बाद भी तो इनके काम होते ही रहने हैं। और खुद से एक सवाल करे इंसान, वाकई जो काम मैं अपने ऊपर लेती हूं वो कोई और दूसरा नहीं कर सकता? वाकई जो सोचती हूं मैं इसके बगैर मुमकिन नहीं, क्या वाकई मुमकिन नहीं होता? और वाकई बच्चों की खुशियों के नाम पे अल्लाह को नाराज करना लाजमी है? बस दफा बेटी की रुखसती में उसकी असल रुखसती भूल जाती है, बस दफा दोस्तों की नजर में खूबसूरत अच्छे बनते बनते अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा की दोस्तियों से बंदा पीछे हो जाता है। कभी तो इंसान सोचे कि जब मैं नहीं थी तब भी तो कुछ था, जब मैं नहीं रहूंगी तो भी तो होगा। मेरी आपकी जिंदगी एक बुलबुला है, इस कायनात के मुकाबले में हमारा लाइफ प्लान बहुत छोटा है। 50-60 साल की उम्र दे के अल्लाह ने भेजा, क्यों? कि मैं और आप आखिरत के लिए जीते हैं। आखिरत का इन्हिसार दुनिया पर है, दुनिया का इन्हिसार आखिरत पे नहीं है, तो फिर आखिरत की फिक्र करनी है। दुनिया के अजान और जमात का दरमियानी वक्त, इकामत का, पैदा हुए अजान की आवाज, मर गए नमाज़े जनाजा, ये है जिंदगी। बीच में खुतबा है जो निकाह की सूरत में होता है, वो हर एक का तो होता भी नहीं है। इमाम इब्ने तैमिया कहा करते थे, इन्ना फिद दुनिया जन्नतुन, बेशक दुनिया में भी एक जन्नत है, मल्लम यदखुलहा, जो इसमें दाखिल नहीं हुआ लई यदखुलल जन्ना, वो जन्नत में भी दाखिल नहीं होगा। तो अल्लाह से दुआ करते हैं कि हमारी मौत का वक्त बड़ा खूबसूरत हो और अल्लाह ताला आपको मुझे तौफीक दे कि हम उसके लिए जीने वाले बन जाएं। ऐ लोगों जो ईमान लाए हो, जब पुकारा जाए नमाज जुमा के दिन तो अल्लाह के जिक्र की तरफ दौड़ो और खरीदो फरोख छोड़ दो, ये हुक्म है। जुमे का दिन सिर्फ वो घड़ी जिस वक्त इमाम खुतबे के लिए खड़ा हो, तब से लेकर नमाज की अदायगी तक हर किस्म की तिजारत कारोबार जॉब हलाल नहीं है। देखिए हफ्ते वाले दिन को तो पूरा हफ्ता का दिन वेट करना पड़ता था, फिर भी वो बेचारे मचले। मुसलमानों की क्या कहिए, सिर्फ 1.5 से 2 घंटे उसको नहीं छोड़ के मर्द मस्जिद में जा सकते, वो और क्या करेंगे? फिर दीन और दुनिया का तकाजा, ग्राहक भी ज्यादा तभी आएंगे जिस वक्त जुमे की नमाज का वक्त होगा। فرمایا جو مرد 3 جمعے تک جمعے کی نماز سے پیچھے رہے اس کے دل پہ مہر لگ جاتی ہے. سب سے اہم فضیلت کا دن ہے جمعے کا. اللہ کے نبی نے فرمایا افضل الایام, اللہ کے دنوں میں سب سے دن خوبصورت جمعے کا دن. فرمایا بہترین دن جس پر سورج چڑھے وہ جمعے کا دن ہے. اسی دن آدم پیدا کیے گئے, اسی دن اتارے گئے دنیا میں, اسی دن ان کی توبہ قبول ہوئی, اسی دن وفات پائی اور اسی دن قیامت آئے گی. جب صبح ہوتی ہے تو تمام جانور کان لگا کے سن رہے ہوتے ہیں حتیٰ کہ سورج طلوع ہو جائے, ورنہ ان کو ایسے لگتا ہے کہ قیامت آ جائے گی. ہر جمعے کے دن کائنات کی ہر چیز قیامت کا دھڑکا رکھتی ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا کوئی مقرب فرشتہ اور زمین و آسمان میں ایسا نہیں ہے جو قیامت کے دن سے نہ ڈرتا ہو. اور جمعے کے دن آپ کو تفضل نماز فجر کی نماز ہے, اس کو باجماعت پڑھنا چاہیے. جمعے کے دن اللہ تعالیٰ ہفتے کے باقی دنوں کو ان کی خاص اہمیت کے حساب سے اٹھائے گا. حدیث میں آتا ہے, بڑا خوبصورت منظر ہے, صرف ایک اشارہ ہی دے سکتی ہوں, کہ جمعے کا دن قیامت کے دن پیش کیا جائے گا, حسین اور چمکتا دمکتا ہوگا. اہل جمعہ اس کو ایسے گھیر لیں گے جیسے نئی دلہن کو لوگ آ کر گھیر لیتے ہیں. چاروں طرف روشنی پھیل جائے گی اور ان کے چہرے چمکدار ہو جائیں گے سفید برف کی طرح, ان کی خوشبو کستوری کی طرح ہوگی. وہ کافور کے پہاڑوں میں گھسے ہوں گے, خوشبویں آ رہی ہوں گی کافور کی. جنوں ان سینے دیکھ کر ان پر رش کریں گے اور ان کی نگاہ جھکی نہ ہوگی اور وہ جنت میں داخل کر دیے جائیں گے. اور ثواب کی امید سے اذان دینے والوں کے علاوہ کوئی ان کے اجر کو نہیں پائے گا. اور آپ کو پتہ ہے جنت میں بھی جمعہ کا دن ہوگا, لیکن اس کا نام یوم المزید, اور دن, یہ وہ دن ہوگا جس دن لوگ اللہ کے چہرے کا دیدار کریں گے. آپ نے فرمایا میرے پاس جبرائیل علیہ السلام آئے اور ان کے ہاتھ میں ایک سفید شیشہ تھا جس کے بیچ میں ایک کالا دھبا پڑا ہوا تھا, نقطہ. پوچھا یہ کیا ہے؟ کہا اللہ جانتا ہے. فرمایا یہ جمعے کا دن ہے. پوچھا یہ دھبا کیا ہے؟ کہا یہ وہ گھڑی ہے جس میں قیامت آئے گی. جمعے کا دن ہمارا سردار ہے اور قیامت کے دن ہم اسے یوم المزید کہہ کر پکاریں گے. آپ نے فرمایا یوم المزید اس کو کیوں کہیں گے؟ مزید یعنی اور ہونے کا دن. فرمایا آپ کے رب نے جنت میں ایک وادی بنائی ہے سفید مسک سے بھی زیادہ خوشبودار, پھر نور کے ممبر ہوں گے, پھر نور کی کرسیاں بچھائی جائیں گی جن پر انبیاء, پھر اس کے بعد صدیقین, پھر شہداء, پھر عام جنتی بیٹھیں گے. کسی بھی سٹیڈیم کا منظر ذہن میں لے آئیے سوچنے کو. اور یہ لوگ ٹیلوں پر بٹھائے جائیں گے اور پھر وہاں اللہ پکارے گا, میں ہوں وہ جس نے تم سے کیا ہوا وعدہ پورا کیا, یہ ہے وہ مقام کہ میں اپنے بندوں کی تکریم کر رہا ہوں. پیچھے پڑھ کے آئے فی مقعد صدق عند ملیق مقتدر, سورۃ قمر کی آیت ہے کہ آج میں نے تمہارے لیے یہ محفل سجائی ہے, مانگو مجھ سے کیا مانگتے ہو, جس نے جو مانگنا ہے مانگو. وہ کہیں گے اللہ ہم سے راضی ہو جا, وہ فرمائے گا میں تم سے راضی ہوں, اسی لیے تو عزت کی سوادی میں تم کو بٹھایا, اور کچھ مانگو. پھر وہ مانگیں گے, پھر مانگیں گے اور مانگیں گے اور ان کی ساری خواہشیں پوری ہو جائیں گی. لیکن اللہ تعالیٰ یہی کہتا رہے گا اور مانگو اور مانگو, اور پھر اللہ وہ دے گا جو کسی آنکھ نے نہیں دیکھا, کسی کان نے نہیں سنا, کسی دل پہ اس کا کوئی گمان نہیں ہوگا. اور فرمایا یہ سارا منظر, یہ سارا پروسیس صرف اتنی دیر میں ہو جائے گا جتنی دیر میں وہ جمعے سے واپس آتے تھے. جب وہ گھر آئیں گے تو ان کے گھر والے کہیں گے جب تم گئے تھے تو اتنے حسین نہیں تھے, تم واپس آئے ہو تو اتنے خوبصورت کیسے ہو گئے ہو. وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربہا ناظرہ, اللہ کے چہرے کا دیدار ان کو خوبصورت کر دے گا. اللہ اکبر. پھر اللہ اپنی کرسی پر چڑھیں گے, وہاں شہداء اور صدیق ہوں گے, لوگ اپنے بالا خانوں میں واپس چلے جائیں گے جو ایک موتی کے اندر گھڑ گھڑ کے بنائے ہوں گے, ون پیس پرل, اور زمرد اور یاقوت کے ہوں گے, اور ان میں ان کے ایسے کمرے ہوں گے بڑے بڑے, پھل میوے اور بیویاں ہوں گی, اور وہ انتظار کریں گی کہ پھر یوم المزید آئے اور ہمیں اپنے رب کا دیدار ہو. اپنے مردوں کو سنانی ہے تو یہ حدیثیں سنائیں, پھر جمعے کی نماز بوجھ نہیں لگے گی. دنیا میں بھی جمعہ عید ہے, اس کو مسلمانوں کی عید کہتے ہیں. آپ نے فرمایا جمعے کے دن صبح اٹھ کے غسل کرو, जुमे के दिन का इस्तकबाल किया करें, गुसल करें, अच्छे तरीके से बाल धोएं, अपने आप को पाक करें, नाखून काटें, खुशबू लगाएं। अल्लाह अकबर। और इस दिन गुनाहों की माफी भी है। अल जुमा इल अल जुमा ती कफारत लिमा बैनहुमा, एक जुमा दूसरे जुमे तक कफारा है। आज जो जितनी अहमियत देगा कल इंशाल्लाह उतना ही मिल जाएगा। अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि हमारे मर्दों को कारोबार से ज्यादा जुमे की फिक्र लगा दे। ऐ लोगों जो ईमान लाए हो, जब पुकारा जाए नमाज के लिए जुमे के दिन, तो अल्लाह के जिक्र की तरफ दौड़ो और खरीदो फरोख्त छोड़ दो, ये तुम्हारे लिए बेहतर है अगर तुम जानो। फिर जब नमाज पूरी हो जाए तो जमीन में फैल जाओ और अल्लाह का फजल तलाश करो और अल्लाह को कसरत से याद करते रहो, शायद के तुम्हें फलाह नसीब हो। अल्लाह में फलाह दे दे। तो मर्दों के लिए जुमे का एहतमाम करना इंतहाई जरूरी है। उस माल में बरकत ही नहीं है जो आप जुमे की नमाज छोड़ के हासिल करते हैं। और जब उन्होंने तिजारत और खेल तमाशा होते देखा तो इसकी तरफ लपक गए और तुम्हें खड़ा छोड़ दिया। इनसे कहो जो कुछ अल्लाह के पास है वो खेल और तमाशे और तिजारत से बेहतर है, अल्लाह सबसे बेहतर रिस्क देने वाला है। चलिए, तिजारत की तो इतनी देर से बात हो ही रही है, ये खेल तमाशे कौन से हैं जिसमें खोकर लोग नमाज भी नहीं पढ़ते। खेल में जीतना ऐसे लगता है मैदाने जंग में जीत गए। अल्लाह अकबर। सूरत मुनाफिकून, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इज़ा जाकल मुनाफिकून कालू नशहदु इन्नका लरसूलुल्लाह। ए नबी, जब ये मुनाफिक आपके पास आते हैं तो कहते हैं हम गवाही देते हैं कि आप यकीनन अल्लाह के रसूल हैं। हाँ, अल्लाह जानता है कि तुम जरूर इसके रसूल हो। यानी इन मुनाफिकों की इस गवाही की कोई ज्यादा जरूरत नहीं इस वक्त। इन्नल मुनाफिकीन लकाज़िबून, मगर अल्लाह गवाही देता है कि मुनाफिक कतई झूठे हैं। उन्होंने अपनी कस्मों को ढाल बना रखा है और इस तरह ये लोग अल्लाह के रास्ते से खुद रुकते और दुनिया को रोकते हैं। कैसी बुरी हरकतें हैं जो ये लोग कर रहे हैं। ये सब कुछ इस वजह से कि इन लोगों ने ईमान ला कर फिर कुफर किया, इसलिए इनके दिलों पर मोहर लगा दी गई और ये कुछ नहीं समझते। देखिए, आपको रहम नहीं आ रहा। पहले पारे में दूसरे रकू से मुनाफिकों का जिक्र शुरू हुआ है। वमिनन नासी मन यकूलु आमन्ना बिल्लाह इन्नल मुनाफिकीन फिद दर्क असफली मिनन नार। सूरत निसा में हमने पढ़ा, पढ़ा था कि नहीं? यहां 28वां पारा आ गया, कुरान पूरा होने वाला है ना। पूरी सूरत मुनाफिकत के नाम पे ये क्या बताती है, इसको निकालना है। अल्लाह ताला आपको मुझे निफाक से पाक कर दे। इन्हें देखो तो इनके जुस्से तुम्हें बड़े शानदार नजर आएंगे। यानी मुनाफिक को अपनी जाहरी टीप टॉप की बड़ी फिक्र है। बोले तो तुम इनकी बातें सुनते रह जाओ, यानी बातों के धनी, मगर असल में ये गोया लकड़ी के कुंदे हैं जो दीवार के साथ चुन कर रख दिए गए हैं। बेअमल लकड़ियों की तरह अपनी जगहों पे सजे संवरे हैं, काम का कोई वक्त नहीं है। हर जोर की आवाज को अपने खिलाफ समझते हैं। कुरान की हर आयत को कहते थे हमारे खिलाफ है, ये पक्के दुश्मन है, इनसे बचकर रहो। अल्लाह की मार इन पर, ये किधर उल्टे फिराए जा रहे हैं। बस इसको पढ़ते हुए तय की दुआ करे, अल्लाह मतअख्खिर कल्बी मिन अन्निफाक, क्योंकि सूरत का नाम बता रहा है कि इसका मजमून क्या है। और जब इनसे कहा जाता है कि आओ ताकि अल्लाह का रसूल तुम्हारे लिए मगफरत की दुआ करे, तो सर झटकते हैं और तुम देखते हो कि ये बड़े घमंड के साथ आने से रुकते हैं। ऐ नबी, तुम चाहे इनके लिए मगफरत की दुआ करो या ना करो, इनके लिए बराबर है क्या कि अल्लाह हरगिज इन्हें माफ ना करेगा। अल्लाह फासिक लोगों को हरगिज हिदायत नहीं देता, ये अल्लाह की सुन्नत है। आप देखिए कि कितना कठिन मामला है। ये वही लोग हैं जो कहते हैं रसूल के साथियों पे खर्च करना बंद कर दो ताकि ये मुंतशिर हो जाएं। हाईलाइट करिए, खुद तो करता नहीं मुनाफिक दीन पे खर्च, दूसरों को कहता है तुम भी ना करो। ना ये सरवाइव कर सके, ना इनके पांव जमे और ये अपना बोरिया बिस्तर लपेट कर यहां से जाए। मुनाफिक को सबसे ज्यादा चिढ़ दीन पे खर्च करने से होती है। हालांकि जमीन और आसमान के खजानों का मालिक अल्लाह है, मगर ये मुनाफिक नहीं समझते। ये कहते हैं कि हम मदीना वापस पहुंच जाएं तो जो इज्जत वाला है वो जलील को वहां से निकालेगा। अस्तग़फिरुल्लाह। हालांकि इज्जत अल्लाह और उसके रसूल और मोमिनीन के लिए है, मगर ये मुनाफिक नहीं जानते और झूठी इज्जत के नाम पे कितना नाराज करते हैं अल्लाह को। ऐ लोगों जो ईमान लाए हो, तुम्हारे माल और तुम्हारी औलादे तुमको अल्लाह की याद से गाफिल न कर दे। फिर आ गया रिश्तों का जिहाद। आप देखिए, अल्लाह ने हमें अपने लिए चुना, मुसलमान बनाया, नबी के उम्मती बनाया, कितनी बड़ी खुशकिस्मती है। अब इतनी बड़ी दौलत को पाकर क्या अल्लाह की याद से गाफिल होने का कोई वक्त है? नहीं। फरमाया, जो लोग ऐसा करें वही खसारा पाने वाले हैं। जो रिस्क हमने तुम्हें दिया है इसमें से खर्च करो कबल इसके कि तुम में से किसी की मौत का वक्त आ जाए और इस वक्त वो कहे, ऐ मेरे रब, क्यों ना तूने मुझे थोड़ी सी मोहलत और दी होती कि मैं सदका देता और सालेह लोगों में शामिल हो जाता। हालांकि जब किसी की मोहलत अमल का पूरी होने का वक्त आ जाता है तो अल्लाह ताला हरगिज मजीद मोहलत नहीं देता, और जो कुछ तुम करते हो अल्लाह इससे बाखबर है। ये है आज की टिप। अभी बहुत वक्त है, कर लूंगा नेकी। नेकियों को पोस्टपोन करते जाओ, डिले। और गुनाह कहते नहीं, अभी तो मौका है, जवानी में तो मजा आता है, बाद में क्या होगा? पैसा होता है इसलिए खुश करें, उसको करें। तो याद रखिए कि हर वो चीज जो अल्लाह के रास्ते में जाने से रोके उस चीज को छोड़ दीजिए, इससे पहले कि वो रस्सी हाथ से छूट जाए जो अल्लाह की तरफ लेकर जाती है।